ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீமத் பகவத்கீதா சாப்டர் 7 டெக்ஸ்ட் நம்பர் 14. இஸ் ஆத்யாத்மிக் ஜான் மே பிரவேஷ் கரனே சே பஹலே குரு ஆர் கௌரங்க சே கிருபா கி யாச்னா கர்த்தே ஹுவே மங்களாச்சரண் கரேங்கே தாக்கி ஹம் ஜோ அத்யயன் கர் ரஹே ஹே உஸ்கா பூரா பூரா லாப் பிராப்த ஹோ சகே ஜோ கி ஹே கிருஷ்ண பிரேம் கி பிராப்தி. भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஜ்ஞானஞ்சனாஶலாகய சக்ஷுருன்மீலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமஃ. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் யேன பூதலே ஸ்வயம் ரூபஃ கதா மஹயம் ததாதி ஸ்வபராந்திகம். வந்தே அஹம் ஸ்ரீகுருஃ ஸ்ரீயுத பதகமலம் ஸ்ரீகுருன் வைஷ்ணவாஶ்ச ஸ்ரீரூபம் சாக்ர ஜாதம் சஹகண ரகுநாத விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சஹிதம் கிருஷ்ண சைதன்ய தேவம். ஸ்ரீராதா கிருஷ்ண பாதம் சகண லலிதா ஸ்ரீ விசாகான்விதாஶ்ச. ஹே கிருஷ்ண கருணா சிந்து தீனபந்து ஜகத்பதி கோபேஷ கோபிகா காந்தா ஸ்ரீ ராதா காந்த நமோஸ்துதே. தப்த காஞ்சனம் கௌரங்கே ஸ்ரீ ராதே விருந்தாவனேஸ்வரி வ்ரிஷபானோ சுத தேவி பிரணமாமி ஹரி ப்ரியே. வஞ்சா கல்பதருப்யஸ்ய க்ரிபா சிந்துப்ய ஏவச்ச பதீதனாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமஃ. ஜய ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்ய பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைதம் கதாதாரம் ஸ்ரீவாசதி கௌர பக்த விருந்தா. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஸ்ரீமத் பகவத்கீதா மாத கீ ஜெய ஹோ. சாத்வா அத்யாய் ஜிஸ்கா சீர்ஷக் ஹே திவ்ய ஜ்யான். श्लोक नंबर 14, ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण श्लोक है. कृपया मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए. भगवान कहते हैं, दैवी ये गुणमयी मम माया दुरध्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते மாயாமேதாம் தரந்தி தே. தைவீ ஏஷா குணமயி மம மாயா துரத்யயா மாமேவ யே ப்ரபத்யந்தி மாயாமேதாம் தரந்தி தே. தைவீ ஏஷா குணமயி मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेकां तरन्ति ते दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेकां तरन्ति ते शब्दार्थ दैवी अर्थात दिव्य स्पिरिचुअल जो इस भौतिक जगत मटेरियल नहीं है दिव्य है क्या येषा जो ये है ये कौन सी जैसे भगवान ने श्लोक नंबर 13 में बताया त्रिभिर गुणमयैर भावय एभिः सर्वम् इदम् जगत। अब भगवान ने इस जगत के अंदर जो माया है उसको दैवी कहा है ना। इस भौतिक जगत में जो माया है जो तीन गुण है उसको भी भगवान ने दैवी कहा। क्यों? क्योंकि जो चीज का संबंध भगवान से होता है वो दिव्य होती है। और भगवान बोल रहे हैं खुद क्योंकि ये माया उनकी है और बता रहे हैं कि ये कोई साधारण माया नहीं है बल्कि ये गुणमयी गुणमयी मतलब तीन गुणों से युक्त जो मेरी माया शक्ति है मम माया दुरत्यया। लेकिन इसको दिव्य कहने के साथ साथ भगवान ने कहा माया माँ मतलब जो नहीं है मतलब ये है तो दिव्य लेकिन इसका अस्तित्व नहीं है। भगवान जो भी बोलते हैं वो बहुत ही अद्भुत शब्द होते हैं हम जैसे साधारण बुद्धि उसको ग्रहण नहीं कर पाती है लेकिन संतगण भक्तगण शुद्ध वैष्णवगण से जब हम श्रवण करते हैं तो बात हमें समझ में आती। भगवान कहते हैं दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया ये माया है जो तीन गुण हैं वो है तो दिव्य लेकिन ये माया है नहीं है टेम्पररी है लेकिन फिर भी इसको पार करना दुरत्यया बहुत कठिन है। दुरत्यया का मतलब है कि इसको पार कर पाने में बहुत बहुत मुश्किल लगेगी इसको आप अपनी स्ट्रगल से पार नहीं कर सकते। ये माया को समझो एक समुद्र के बराबर हम समझें और हम अपनी आत्मा चाहे कि इस माया को क्रॉस करूं तो भगवान ने कहा देखो मैं बता देता हूं कि ये जो मेरी माया तीन गुणों से बनी हुई है गुणमयी वो उसको पार करना बहुत कठिन है। लेकिन क्योंकि भगवान समस्त जीवों से बहुत प्रेम करते हैं तो वो इस माया के अंदर जीव को जकड़ा हुआ मरते हुए नहीं देखना चाहते। जैसे रेशम का कीड़ा अपने ही मुख से निकले हुए रेशम के जाल में फंसकर मर जाता है भगवान जीव को अपने ही गुणों के कारण जन्म मरण के चक्कर में बारंबार मरते हुए झुलसते हुए नहीं देखना चाहते। वो भगवान हैं और वो बहुत ही कोमल हृदय हैं बहुत प्रेम करते हैं स्नेह करते हैं अपने समस्त अंशों से। तो भगवान एक उपाय बता रहे हैं भगवान कह रहे हैं माम एव माम का मतलब होता है मुझे मुझे मतलब कौन जो कृष्ण साक्षात खड़े युद्ध क्षेत्र में खुद अपने ऊपर छाती पीट के कह रहे हैं कि मेरी मैं मेरे को मैं अपने आप के लिए कृष्ण कह रहे हैं माम एव एव शब्द बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। एव का मतलब होता है खबरदार मेरे अतिरिक्त कोई और की बात नहीं कर रहा हूँ ना किसी परमात्मा की बात कर रहा हूँ ना किसी ब्रह्म की बात कर रहा हूँ मैं अपनी बात कर रहा हूँ माम एव ये प्रपद्यन्ते ये का मतलब होता है जो प्रपद्यन्ते यानी शरण ग्रहण करते हैं। पहले तो बोला दैवी येषा गुणमयी ये जो तीन गुणों से युक्त मेरी दिव्य प्रकृति है मम माया वो माया है मेरी माया है और उसको इसको पार करना अत्यंत ही कठिन है। परंतु एक उपाय है, माम एव ये प्रपद्यन्ते, जो सिर्फ मेरी शरण ग्रहण करते हैं, माया मेताम, माया में माया मतलब इस माया को तरंति ते पार कर जाते हैं, वो तरंति ते मतलब वो उस माया को पार कर पाते हैं जो मेरी शरण ग्रहण करते हैं। अनुवाद, प्रकृति के तीन गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना अत्यंत कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान की शक्तियां अनंत हैं और ये सारी शक्तियां दैवी हैं। यद्यपि जीव आत्माएं उनकी शक्तियों के अंश हैं, अतः वे दैवी हैं, किंतु भौतिक शक्ति के संपर्क में रहने से उनकी पराशक्ति आच्छादित रहती है। अब हम जीव आत्माएं, जितने भी जीव आत्माएं भगवान की दैवी शक्तियां हैं, लेकिन क्योंकि भौतिक शक्ति जो भगवान की है, पराशक्ति जो है वो अपराशक्ति के संपर्क में आने के कारण आच्छादित रहती है, यानी ढक जाती है। इस प्रकार भौतिक शक्ति से आच्छादित होने के कारण मनुष्य उसके स्वभाव का अतिक्रम नहीं कर पाता, यानी कि फिर याद ही नहीं रहता उसको कि मैं वास्तव में यह शरीर नहीं हूँ या आत्मा हूँ, और मुझे इन भौतिक वस्तु और व्यक्तियों से कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि आच्छादित हो गई है ना। भगवान की परा प्रकृति है जीव और अपरा प्रकृति यह भौतिक संसार, लेकिन ये दोनों शक्तियां दैवी हैं, दिव्य हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि पराशक्ति अपराशक्ति से आच्छादित हो जाती है, इसलिए वो अतिक्रम नहीं कर पाती है, अपने वास्तविक स्वभाव को विस्मरण कर लेती है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि परा तथा अपरा शक्तियां भगवान से उद्भूत होने के कारण नित्य हैं। अब चाहे कोई भी शक्ति हो, भगवान की पराशक्ति हो या अपराशक्ति हो, क्योंकि वो भगवान से निकली है, जन्मादस्य यतोन वयादि तरतस, जो कुछ भी संसार में है वो भगवान से उत्पन्न है, तो भगवान की सारी शक्तियां नित्य हैं। जीव भगवान की पराशक्ति से संबंधित होते हैं, जैसा कि भगवान ने कहा, अपरेयम इतस्त्वन्यान प्रकृतिम विद्धि में परा जीवभूता महाबाहो यहिदं धारयते जगत। जीव को भगवान ने परा प्रकृति कहा है, तो यहाँ श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि जीव भगवान की पराशक्तियों से संबंधित है, किंतु अपरा शक्ति अर्थात पदार्थ के द्वारा दूषित होने से उनका मोह भी नित्य होता है। वो इतने दूषित हो जाते हैं भौतिक अपरा प्रकृति के कारण कि वो नित्य रूप से मोहित रहते हैं, यानी जिस भी जन्म में जाते हैं, जिस भी शरीर को धारण करते हैं, वो क्या सोचते हैं कि मैं यही शरीर हूँ। उसे चाहे गधे का शरीर मिले, चाहे कुत्ते का शरीर मिले, चाहे मनुष्य का शरीर मिले, चाहे देवता का शरीर मिले, वो समझता यही है कि मैं यही शरीर हूँ। अब देखो, हम सब मनुष्य है ना, आज हमें मनुष्य का शरीर मिला है, लेकिन वास्तव में हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, लेकिन फिर भी हमें लगता यही है अंदर से, हृदय के किसी कोने में बात टकी हुई है कि हम ये शरीर हैं, और इस शरीर से रिलेटेड जितनी वस्तु और व्यक्ति हैं उनसे मेरा संबंध है ना, ऐसा हमें लग रहा हो, तो इनका मोह भी नित्य हो जाता। अतः बद्ध जीव नित्य बद्ध है, वो भौतिक प्रकृति के आक्रमण में आकर अपनी वास्तविकता भूल जाते हैं। कोई भी इसके बद्ध होने की तिथि को नहीं बता सकता। अभी कोई ये सोचे कि मैं कब से बद्ध हुआ हूँ, वो डेट बताओ जब भगवान ने मुझे इस भौतिक जगत में डाला था, तो बोला, यहाँ कहते हैं उसकी कोई डेट नहीं है, कोई तिथि नहीं है कि इस दिन से आप बद्ध, बस जब से तुम संसार में, भगवान ने जब से जीव बनाया है तब से ही, कितनी दफा प्रलय होता है, फिर वापस से संसार की उत्पत्ति होती है, सब महाविष्णु के अंदर, कारण दक्षिण विष्णु के अंदर समा जाते हैं, और पुनः जब संसार की रचना होती है तो वापस से ये जीव को कोई उनके कर्मों के अनुसार कोई ना कोई जन्म मिलता है, ये चक्कर चलता रहता है, और कोई मतलब किसी को याद भी नहीं होगा, देवता भी कितनी दफा आते हैं जाते हैं, किसी को भी याद नहीं होगा कि आप वो कौन सा समय था या कौन सी तिथि थी जब आप संसार में बद्ध हुए थे। फलस्वरूप प्रकृति के चुंगल से उसका छूट पाना अत्यंत कठिन है, भले ही प्रकृति अपराशक्ति ही क्यों न हो, क्योंकि भौतिक शक्ति परम इच्छा द्वारा संचालित होती है। कोई बोल सकता है कि ये तो अपराशक्ति है और हम तो पराशक्ति हैं, जीव तो पराशक्ति है, फिर जीव इस अपराशक्ति से क्यों नहीं छूट सकता। तो यहाँ पर बताते हैं क्यों नहीं छूट सकता, अत्यंत कठिन है भले ही अपराशक्ति है, क्योंकि भौतिक शक्ति परम इच्छा द्वारा संचालित है। ये परम इच्छा है कि आपको यहाँ पर आकर विस्मरण हो जाता है कि आप वास्तव में कौन हो। अब आप ये आरोप लगाओगे कि भगवान ऐसी इच्छा क्यों करते हैं कि हम वास्तव में भगवान के नित्य दास हैं, हम अंश हैं भगवान का, हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए, ये भगवान हमें क्यों बुला देते हैं, क्यों ऐसी इच्छा करते हैं। तो वास्तव में ये भगवान की इच्छा नहीं है, ये भगवान की कृपा है। क्यों? क्योंकि जब जीव तटस्थ शक्ति होकर इस भौतिक प्रकृति में आने के लिए इच्छा करता है तो भगवान उसे पूरी स्वतंत्रता देते हैं। यदि यहाँ पर आकर उसे कंटिन्यूअस ये याद रहे कि मैं भगवान का दास हूँ, मुझे भगवान की भक्ति करने के अतिरिक्त और मुझे ना कोई इंद्रिय तृप्ति करनी है, ना कोई इच्छा करनी है, ना तो फिर वो इस भौतिक जगत में आता ही क्यों, फिर तो उसे डायरेक्ट से आध्यात्मिक जगत में। यहाँ पर जीव के आने का कारण ही ये है कि वो अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहता है। तो यदि वो इस बात से, यदि माया शक्ति उसे मोहित नहीं करती, यदि सारे गुण मिलकर उसकी सहायता नहीं करती, तो वो अपनी इच्छा पूरी करता कैसे। भगवान इतने कृपालु हैं कि वो अपने अंश की हर एक इच्छा को पूरा करने के लिए उसकी सहायता करते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान उसे छोड़ देते हैं गुणों में तड़पता हुआ, माया के अंदर ये दुरत्य या माया के अंदर शिकंजे में फंसा हुआ छोड़ देते हैं। फिर भी भगवान बता रहे हैं कि तुम्हारी इच्छा के कारण मैंने इस भौतिक जगत में तुम्हें भेजा है, लेकिन अब अगर तुम इस माया को पार करना चाहते हो तो मामेव ये प्रपद्यन्ते, एक ही तरीका है कि तुम मेरी शरण में पुनः आ जाओ। यहाँ पर अपरा भौतिक प्रकृति को दैवी प्रकृति कहा गया है, क्योंकि इसका संबंध दैवी है तथा इसका चालन दैवी इच्छा से होता है। दैवी इच्छा से संचालन होने के कारण भौतिक प्रकृति अपरा होते हुए भी दृश्य जगत के निर्माण तथा विनाश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वेदों में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, मायां तु प्रकृतिं विद्यां, माइनं तु महेश्वरं, मायां तु प्रकृतिं विद्यां। यद्यपि माया जो भौतिक प्रकृति है मिथ्या है या नश्वर है, किंतु माइनं तु महेश्वरं, माया की पृष्ठभूमि में परम जादूगर भगवान है जो परम नियंता महेश्वर है। श्वेता शूत्र उपनिषद 4.10। गुण का दूसरा अर्थ रस्सी अर्थात रज्जु है। इससे यह समझना चाहिए कि बद्ध जीव मोह रूपी रस्सी से जकड़ा हुआ है। यदि मनुष्य के हाथ पैर बांध दिए जाए तो वह अपने को छुड़ा नहीं सकता। इसकी सहायता के लिए कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बंधा न हो, क्योंकि एक बंधा हुआ व्यक्ति दूसरे बंधे हुए व्यक्ति की सहायता नहीं कर सकता। अतः रक्षक को मुक्त होना चाहिए। अतः केवल कृष्ण या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु ही बद्ध जीव को छुड़ा सकते हैं। बिना ऐसी उत्कृष्ट सहायता के भावबंधन से छुटकारा नहीं मिल सकता। भक्ति या कृष्ण भावनामृत इस प्रकार के छुटकारे में सहायक हो सकता है। कृष्ण माया के आदेश्वर होने के नाते इस दुर्लंघ शक्ति को आदेश दे सकते हैं कि बद्ध जीव को छोड़ दे। वे शरणागत जीव पर अहितु के कृपा तथा वात्सल्यवश ही जीव को मुक्त किए जाने के आदेश का आदेश देते हैं, क्योंकि जीव मूलतः भगवान का प्रिय पुत्र है। अतः निष्ठुर माया के बंधन से मुक्त होने का एकमात्र साधन है भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना। श्रील प्रभुपाद जी ने अत्यंत ही सुंदर यहाँ पर दृष्टांत दिया है कि क्योंकि माया का मतलब रस्सी होता है, और रस्सी से आपके हाथ पे बांध दिए जाए, आप कितनी ही कोशिश करो, आपको कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो जिसके हाथ पैर बंधे हुए ना होंगे, वो आपको खोलेगा, तभी आप खुद को खोल सकते हो, वरना आप अपनी सहायता से तो खोल नहीं सकते, है ना। तो इसीलिए केवल कृष्ण जो इस माया प्रकृति से परे हैं, या उनके शुद्ध वैष्णव डिवोटी जो भगवान के सानिध्य से इस माया से पार हो चुके हैं, केवल वही हमारी इस, और अगर भगवान चाहें, क्योंकि इस माया के अधीश्वर वही हैं, तो इस माया को अपनी इच्छा से नहीं पार किया जा सकता है, लेकिन भगवान यदि चाहें तो इस माया को आदेश दे सकते हैं, क्योंकि वो उनके ईश्वर हैं। और तो फिर माया जो है वो इस जीव को छोड़ देगी। वे शरणागत पर अहितु की कृपा तथा वात्सल्य ही जीव जीव को मुक्त किए जाने का आदेश देते हैं, क्योंकि शरणागत जीव के ऊपर वो अहितु की कृपा करते हैं। भले ही जीव ने स्वयं इस माया को चुना है, लेकिन जीव पुनः जब भगवान की शरण में आ जाता है और अपनी इस भूल को संवार लेता है कि कृष्ण मैं अब इस माया से अधिक नहीं जूझ सकता हूँ, मैं पुनः आपकी शरण में आना चाहता हूँ, तो भगवान अपनी अहितु की कृपा और वात्सल्य से उसे माया से पार करा देते हैं, क्योंकि जीव मूलतः भगवान का प्रिय पुत्र है। चाहे कितनी ही गलतियां हमसे क्यों ना हो जाएं, लेकिन भगवान ये कभी नहीं भूलते कि हम उनके अंश हैं। इसे भगवान कहते हैं अपि चेत सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग। अब ये मत सोचो कि आपसे कितने अपराध हो चुके हैं, बल्कि आप ये सोचो कि मैं कितना इतना कृपालु हूँ कि इतने सारे अपराधों के बावजूद भी मैं आपको स्वीकार करता हूँ। अतः निष्ठुर माया के बंधन से मुक्त होने का एकमात्र साधन भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना है। इसे भगवान कहते हैं मामेव, और श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं मामेव पद भी अत्यंत ही सार्थक है। माम का अर्थ है एकमात्र कृष्ण को, ब्रह्मा या शिव को नहीं। यद्यपि ब्रह्मा तथा शिव भी अत्यंत महान हैं और प्रायः विष्णु के ही समान हैं, किंतु ऐसे रजोगुण तथा तमोगुण के अवतारों के लिए संभव नहीं है कि वे बद्ध जीव को माया के चुंगल से छुड़ा सकें। जैसे ब्रह्मा जी रजोगुण के अवतार हैं, और रजोगुण के अवतार होने का मतलब ये कि वो भौतिक सृष्टि का सृजन करते हैं। सृजन करने के रजोगुण की आवश्यकता होती है, और प्रलय करने के लिए तमोगुण की आवश्यकता होती है। तो ब्रह्मा और शिव रजो तथा तमोगुण के अवतार हैं, इसलिए उनके लिए संभव नहीं है कि वो बद्ध जीव को माया के चुंगल से छुड़ा सकें। अब क्योंकि वो गुणों के अवतार हैं, ब्रह्मा तथा शिव दोनों ही माया के वश में रहते हैं, केवल विष्णु ही माया के स्वामी हैं, अतः वे बद्ध जीव को मुक्त कर सकते हैं। वेदों में श्वेताश्वत्थर उपनिषद 3.8 में इसकी पुष्टि तमेव विदित्वा के द्वारा हुई है। इसका अर्थ यह है कि कृष्ण को जान लेने पर ही मुक्ति संभव है। शिव जी भी पुष्टि करते हैं कि केवल विष्णु कृपा से ही मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। मुक्ति प्रदाता सर्वेषां विष्णुरेव न संशया। मुक्ति प्रदाता अर्थात मुक्ति प्रदान करने वाला सर्वेषां समस्त जीवों को विष्णु एव केवल विष्णु अर्थात केवल भगवान श्री कृष्ण ही न संशय, इसमें कोई संशय नहीं है कि विष्णु ही सबों को मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय हो। मूकं कुरु तु वाचालं पंगुं लंघयति गिरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं। अत्यंत ही महत्वपूर्ण श्लोक है 7.14। और भगवान श्री कृष्ण अपने शब्दों में अपनी माया से पार जाने का तरीका बताए। वास्तव में भक्तों, ये श्रीमद् भगवत गीता कोई साधारण शास्त्र नहीं है, भगवान के द्वारा बोला गया है। कृष्ण जो समस्त कारणों के कारण, हम आत्मा हैं, भगवान का अंश, भगवान स्वयं कहते हैं भगवत गीता में, ममैव अंश जीवलोके जीवभूत सनातन मन श्रेष्ठानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति। वो अपने मन और छह इंद्रियों के द्वारा घोर संघर्ष कर रहा है, ये भूल जाता है कि मेरा अंश है, और अपने अंशों को इस तरह संघर्ष करते हुए दुखों से बचाने के लिए, बारंबार मृत्यु के जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ाने के लिए भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान हम पतित जीवों पर कृपा करने के लिए दिया है। और हमारा सौभाग्य है कि हमें भगवान के इन शब्दों को श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। कितने सारे मनुष्य हैं, भगवान बताते हैं, जैसे हमने पढ़ा 3 नंबर श्लोक में, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धः यततामपि सिद्धानां कश्चिन् माम वेति तत्त्वतः। भगवान की नजर में सबसे ज्यादा उत्तम वो है जो भगवान को जानने का प्रयास करता है, जो भगवान को, कृष्ण को भगवान समझता है। और हम उनमें से हैं जो भले भक्ति की अभी तक शुभारंभ किया है, लेकिन सही रास्ते पर आए हैं। और आज श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, यदि मार्ग सही हो तो रास्ते पर मंद गति से चलने पर भी एक न एक दिन तो लक्ष्य प्राप्त हो ही जाएगा, लेकिन यदि उस लक्ष्य को जल्द से जल्द प्राप्त करना है तो सीरियस होना पड़ेगा, गंभीरता के साथ कार्य करना पड़ेगा। और आज भगवान कृष्ण अपनी माया शक्ति के विषय में बोल रहे हैं। माया मीन्स जो नहीं है। अभी हम सोच रहे हैं कि हम ये शरीर हैं, हम अपना और कृष्ण का संबंध भूल जाते हैं, उसको नहीं समझ पा रहे हैं कि हम आत्मा हैं, हमारा शरीर तो केवल हमें अपने कर्मों के अनुसार मिला है, वास्तव में हम आत्मा हैं और हमारा संबंध केवल कृष्ण से है, ये ना समझ पाना माया है। और भगवान बताते हैं, प्रकृति क्रियमानानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ता हम इति मन्यते। प्रकृति क्रियमाणानि, ये जो कुछ भी हो रहा है वो प्रकृति के द्वारा, गुणों के द्वारा होता है, परंतु अहंकार विमूढ़ आत्मा, जीव आत्मा अहंकार के प्रभाव से इतना मोहग्रस्त हो जाती है कि वे कर्ता हम इति मन्यते, वो मानता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो मैं ही कर रहा हूँ, अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में कैसे हो रहा है, प्रकृति क्रियमाणानि, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा किए जाते हैं। और इसी मिथ्याभिमान के कारण हमें कठिन संघर्ष करना पड़ता है। इस भौतिक शरीर की धारणा से बाहर आना बहुत बहुत कठिन है। इसीलिए भगवान ने कहा, दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। इस भौतिक शरीर की धारणा से बाहर आना बहुत कठिन है। ये भ्रम जिसके कारण हम शरीर का भोग करके सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं, इसको पार करना अति कठिन है। हम कितने शास्त्र पढ़ते हैं, प्रवचन सुनते हैं, फिर भी हम माया के द्वारा बंधे हुए हैं। इसीलिए कृष्ण कहते हैं, माम एव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आता है वही पार कर सकता है। ये वास्तव में समस्त ज्ञानों का सार है, कृष्ण को समर्पित करना। परंतु ये कोई कठिन नहीं है, एक बच्चा भी ऐसा कर सकता है। प्रहलाद महाराज 5 साल के थे, हजारों तकलीफें आईं, अनेकों दुख भोगने पड़े उनके जीवन में, बहुत कष्ट थे, परंतु वो सदैव कृष्ण का नाम जपते थे तो सारी बाधाएं उन्होंने अत्यंत ही सरलता से पार कर ली। यही सत्य का सिद्धांत है। हम माया के मुकाबले में शक्तिहीन हैं, परंतु केवल कृष्ण ही उस माया का मुकाबला कर सकते हैं। अगर हम कृष्ण के हाथों में खुद को सौंप देंगे, वो हमें इस कष्टमय भूमि से आनंद की भूमि में ले जाएंगे, और वो तो हमारे हृदय में है। जीव जब तक इस माया के भ्रम से बाहर नहीं निकलेगा, तब तक जीव दुखी रहेगा। परंतु भगवान हमसे प्रेम कर रहे हैं तो दुखी नहीं देखना चाहते, इसे आज बता रहे हैं कि तुम जब तक मेरी शरण में नहीं आ जाओगे, तब तक कभी भी माया की चुंगल से नहीं बच सकोगे। माम एव ये प्रपद्यन्ते, इसलिए तुम्हें मेरी शरण में तो आना ही पड़ेगा। परंतु कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, जब इच्छा करे तब आओ, नहीं आना चाहते तो नो प्रॉब्लम, झुलसते रहो इसी माया में, भौतिक संसार की दावानल अग्नि में। जब इच्छा होगी तब आना, और जब तुम आने का प्रयास करोगे तो मैं तुम्हें अवश्य अपना लूंगा। जैसे ही तुम मेरी शरण में आओगे तो माया में ताम तरंती ते, इस माया से पार हो जाओगे। और इस माया से पार होकर कहाँ जाना है, भगवान आगे बताते हैं भगवत गीता में चैप्टर 15 टेक्स्ट नंबर 3-3 में। तत् पदम तत् परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गताना निवर्तन्ति भूया तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये। यत्त प्रवृत्ति प्रसिता पुराण, कि तुम्हें ऐसे पद के ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए। तत्त परम तत् परिमार्गितव्यम्, एक ऐसा स्थान है यस्मिन् गतान निवर्तन्ति भूया, जहाँ पर जाकर तुम्हें पुनः इस भू में, इस संसार में, इस जगत में लौटना ना पड़े। क्यों? क्योंकि भगवान ने बताया श्लोक नंबर 13 में पहले कि त्रिभिर् गुणमयर भावे एभि सर्वम इदम् जगत, कि ये जो जगत है वो तो माया से भरा हुआ है, तो फिर ऐसी जगह जाना पड़ेगा जहाँ से पुनः इस भूलोक में वापस आना ना पड़े। तमेव चाध्यम पुरुषम प्रपद्ये, और वहां पर ऐसे आदि पुरुष की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। यत् प्रवृत्ति प्रसृता पुराण, जिनकी जिनसे अनादिकाल से समस्त वस्तुओं का प्रारंभ होता है। और शरण में आने के लिए भी भगवान ने बताया, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैशति सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि मे, कि यदि तुम सदैव मन में मेरा चिंतन करोगे, मेरी भक्ति करोगे, मेरी पूजा करोगे, मुझे समर्पण करोगे, मुझे प्रणाम करोगे, तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम मुझे प्राप्त करोगे। परंतु फिर भगवान ने सोचा कि मैंने बोल तो दिया कि आप स्वयं खोजो उस जगह को और मन से मेरा चिंतन करो, परंतु इस कलयुग का जीव इतना अभागा है कि वो वास्तविकता की ओर बढ़ने के लिए प्रयास ही नहीं कर पाएगा, वो इस भ्रम से बाहर निकलना चाहेगा ही नहीं कि मैं यह शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये बात उसके बुद्धि में समाएगी नहीं। एक तो उसके पास समय बहुत कम होगा, प्रायेण अल्पायुष्य सभ्य कलावस्मिन् युगे जना मंदासु मंदमतयो मंदभाग्य हृपद्रता। एक तो उसकी आयु अल्प है, उसके बाद मंदमति मंद सुस्त लोग हैं और अभागे इतने कि कभी उन्हें शुद्ध भक्तों का दर्शन तक नहीं होता, और अगर कभी हो जाता है तो उनका लाभ उठाने के लिए उनके पास समय नहीं होता, सदैव बेचैन रहते हैं। तो भगवान ने स्वयं ही सोचा कि मैं ही जाकर समस्त जीवों को अपना प्रेम प्रदान कर देता हूँ, क्योंकि यदि मेरा प्रेम उनको प्राप्त हो जाएगा तो मेरी शरण में आना सुलभ हो जाएगा। परंतु फिर भगवान ने विचार किया कि मेरा प्रेम मेरे पास तो है ही नहीं, अब भगवान स्वयं से थोड़े ना प्रेम करते हैं, भगवान से तो उनके भक्त प्रेम करते हैं, और भक्तों में भी सर्वश्रेष्ठ उनके उनको जो प्रेम करती हैं वो है भक्त श्रोमणी, भगवान की आराधनीय शक्ति श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी भगवान से अलग नहीं है, वो भगवान की शक्ति है, आराधनीय शक्ति। समझो भगवान ने अपने सौंदर्य समर्पण और प्रेम को मूर्तिमान स्वरूप दिया है श्रीमती राधा रानी का। तो भगवान ने श्रीमती राधा रानी से जाकर याचना की कि हे राधे, मैं धरती पर जा रहा हूँ क्योंकि मैं कलयुग के जीवों को यूं दुखों में दुखी नहीं देख सकता, झुलसता हुआ नहीं देख सकता, बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा हुआ नहीं देख सकता। उनके पास तो न बुद्धि है, न आयु है, न ही शुद्ध साधु संग है, वो कैसे इस जन्म मृत्यु के चक्कर से दूर हटेंगे। मैं उनको स्वयं अपना प्रेम प्रदान करने के लिए जा रहा हूँ और मैं महावदन्याय होकर उनको अपना प्रेम प्रदान करूंगा, तो आप मुझे जो आपके हृदय में प्रेम है वो दे दीजिए, मैं धरती पर बांटने जा रहा हूँ। तब श्रीमती राधा रानी ने कहा, नहीं कृष्ण, मैं तुम्हें इस भयानक कलयुग में जाने के लिए नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी और न ही मैं तुम्हें अपने हृदय में रखा हुआ प्रेम दूंगी। जब कृष्ण ने ऐसा सुना तो उन्होंने एक उक्ति सोची, अब वो चोर तो है ही, उन्होंने संकल्प किया कि सीधे से नहीं दे रही हैं तो घुस गए राधा जी के हृदय में और वहां से वो प्रेम चोरी करने का संकल्प किया। अब जैसे हम सब जानते हैं कृष्ण का रंग कौन सा है, सांवरा है, और श्रीमती जी का रंग है गोरा। अब जो सांवरा था वो तो अंदर चला गया और जो बाहर दिख रहा है वो कौन है, गौरा, है ना। तो यानी जब राधा से कृष्ण को क्षमा, जब राधा जी के हृदय से कृष्ण प्रेम को चुराकर इस संसार में आने लगे तो राधा जी भी उनके साथ हो ली और बोली, एक बार तुम हृदय में आ गए तो क्या सोचते हो कि मैं तुम्हें फिर इतना सरलता से जाने दूंगी, अब हम दोनों इकट्ठे ही जाएंगे जीवों का कल्याण करने के लिए। दोनों मिलके एक हो गए, बाहर से उनका स्वरूप गौर है और अंदर केवल कृष्ण प्रेम भरा हुआ है, मतलब कृष्ण इंटू राधा, मतलब प्रेम भक्ति और समर्पण का मूर्तिमान स्वरूप है श्री गौरांग महाप्रभु। तो क्या बना, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य, अर्थात गौरांग महाप्रभु वो कृष्ण है परंतु राधा जी का हृदय लेकर आए, ताकि जो मेरा प्रेम जो राधा के हृदय में है उसके द्वारा राधा मुझे अपने वश में रखती है, इस प्रेम को मैं इस संसार में बांटूंगा। इसी प्रेम को गली गली में बांटता है, गौलोक केरा प्रेम धना हरिनाम संकीर्तना, ये महामंत्र इस संसार का नहीं है, ये गौलोक का महामंत्र है, गौलोक का प्रेम धन है। गौलोक में श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण को आकर्षित करने के लिए इस महामंत्र को गाती हैं, और महाप्रभु ने आते ही ये घोषणा की, पृथ्वी से आचयत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम, इस धरती पर जितने भी नगर और गांव हैं वहां पर सर्वत्र यह महामंत्र का प्रचार होगा। महाप्रभु ने तो 500 वर्ष पहले यह भविष्यवाणी कर दी, परंतु आज जो हम यहाँ पर गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में, पाश्चात्य देश में, वेस्टर्न कंट्रीज में ये महामंत्र सुन रहे हैं, इसका पूरा का पूरा श्रेय जाता है श्री प्रभुपाद जी को। श्री प्रभुपाद जी ने महाप्रभु की इस भविष्यवाणी को सार्थक करने के लिए वो 70 साल की आयु में वेस्टर्न कंट्रीज में गए और वहाँ के जीव जो कि शून्यवाद थे, जो ना भगवान को मानते थे ना मंत्र को मानते थे, जो भौतिक इंद्र तृप्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते थे, उन्हें महामंत्र का यह सुंदर उपहार दिया और उसके कारण वहाँ पर करोड़ भक्त बने। और उस समय 12 साल में, यानी वो 70 साल की उम्र में गए और बाकी 12 साल में उन्होंने पूरे वर्ल्ड का 14 बार चक्कर लगाया। इतना मतलब महामंत्र के अंदर इतनी शक्ति है कि जीव डिवाइन हो जाता है। भले ही जीव इस प्रकृति का होता है, लेकिन यह महामंत्र जीव को आध्यात्मिक बना देता है। वास्तव में भक्तों केवल यही तरीका है कृष्ण को प्रपद्यते करने का, क्योंकि भगवान ने बताया है माम एव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आता है। तो यहाँ पर शरण में आने का कैसे जाए, ये प्रश्न उठता है ना कि कैसे भगवान की शरण में जाया जाए। बहुत सरल विधि है, जैसे सबलाइम। सबलाइम जानते हैं आप? सबलाइम एक ऐसा मेथड है, केमिस्ट्री में एक शब्द होता है सब्लिमेशन। इसका प्रोसेस ये होता है कि दो चीजों को मिलाकर तीसरी चीज बनती है, परंतु दिखता नहीं है कि ये चीज बनी कैसी है। इसको कहते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन इज अ प्रोसेस इन विच टू थिंग्स मीट, समथिंग कम्स आउट। दो चीजें मिलती हैं तो कुछ ना कुछ तीसरी चीज मिलकर वो बनती है, बट यू डोंट नो हाउ इट इज हैपनिंग। आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे बना है। तो ये जो महामंत्र है वो सब्लाइम प्रोसेस है, यानी हमारी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है। वी विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम भौतिक प्रकृति इनटू स्पिरिचुअल प्रकृति। हम भले ही इस माया में अभी गिरे हुए हैं, भगवान माया से परे हैं, हम माया में फंसे हुए हैं, लेकिन जब हम भगवान के पवित्र नाम को जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये पूरी तरह से आध्यात्मिक है। इस ये पवित्र नाम इस भौतिक जगत का नहीं है। तो जब हम इस नाम को जप करते हैं, भगवान के पवित्र शब्दों को, जैसे हम भगवत गीता को पढ़ते हैं, भगवान की पवित्र लीलाओं, ये सब दिव्य हैं। जब हम इन सबके द्वारा, भगवान के नाम गुण लीलाओं शब्दों के द्वारा भगवान के साथ संबंधित हो जाते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता हम डिवाइन हो जाते हैं। वी विल ट्रांसफर एंड बिकम डिवाइन। हम इस भौतिक प्रकृति में जो अभी माया से घिरे हुए हैं, भगवान कहते हैं कि दैवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। इस माया से पार करना उसको बहुत कठिन है, परंतु एक प्रोसेस बताया, माम एव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आता है, माया में ताम तरन दिते, वो सरलता से इस माया को पार कर लेता है। और भगवान प्रोसेस बताते हैं कि यदि आप भगवान के पवित्र नाम का जप करोगे, यदि भगवान की कथाओं का, भगवान की लीलाओं का, भगवान की शब्दों का श्रवण करोगे, तो माया में ताम तरन दिते, माया को अत्यंत ही शीघ्रता और सुलभता के साथ पार कर जाओगे। और इस भौतिक शक्ति को पार करने के बाद कहाँ पहुँचना है, वो कौन सी जगह है? भगवान कहते हैं यत गत्वा न निवर्तन्ते तद् धाम परमं मम। वो जगह जहाँ पहुँचने के बाद तुम्हें वापस इस भौतिक जगत में आना नहीं पड़ता, वो मेरा धाम है। वेदों के सबसे ऊंचे सिद्धांत का पालन है। वास्तव में ये महामंत्र कोई स्त्रियों और बच्चों को एंटरटेन करके उनको नचाने का साधन नहीं है। इसको पूरे ध्यान के साथ गाना चाहिए। नाम
और नाम में कोई अंतर नहीं है, वो चैतन्य है। भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि हम। आप जिस भाव से मेरी शरण में आओगे मैं उसी भाव से तुम्हें स्वीकार करूंगा। अगर आप जप करते हुए अपने कारोबार के विषय में सोचते हो या नृत्य करते हुए ये सोचते हो कि मैं कैसा लग रहा हूँ या कैसी लग रही हूँ, सब मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, तो कृष्ण उसी प्रकार से फल देंगे। कृष्ण और कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण का नाम चेतन है, चैतन्य रस विग्रह। यदि आप कृष्ण का नाम जपते हुए हृदय से ये प्रार्थना करोगे, कृष्ण कृष्ण मुझे बचाओ, मुझे आपका सहारे की आवश्यकता है, मैं आपकी सहायता के बगैर मर जाऊंगी और मुझे आपकी शरण में रहना है, मैं आपकी शरण प्राप्त करना चाहती हूँ, कृपया मुझे अपनी शरण में लीजिए, तो कृष्ण अहि दुखी कृपा के द्वारा आपकी सहायता करने के लिए फौरन आ जाते हैं। अगर हम एक बार भी सच्चे भाव से भगवान का नाम पुकारेंगे तो आध्यात्मिक धाम को प्राप्त हो जाएंगे। हमारी पूरी साधना, पूरा अध्ययन, सारा श्रवण का रिजल्ट यही है कि हमारे कृष्ण नाम के प्रति प्रेम बढ़े, यही साधना की पूर्णता है। इसलिए जब हम भगवान का नाम लें तो बड़े ध्यान से सुनना चाहिए और ये याद रखना चाहिए कि इस भाव सागर से पार कराने का एकमात्र यही उपाय है। अगर मैंने इस नाम को अच्छे से श्रवण नहीं किया, मुख से अच्छे से उच्चारण नहीं किया, तो मैं कभी भी इस भाव सागर से पार नहीं कर पाऊंगी। अपने नाम के रूप में भगवान प्रकट होते हैं, एक एक शब्द को पूरे ध्यान के साथ श्रवण करना चाहिए। जब भक्तगण अपने हाथ ऊपर करते हैं, बड़ी बड़ी छलांगे लगाते हैं, तो इसका मतलब है पूरे ब्रह्मांड में भगवान की कृपा दृष्टि हो रही होती है। भगवान प्रसन्न होते हैं ये देख करके मेरे बच्चे कितनी प्रेम के साथ मेरे नाम का स्मरण करते हैं। हाथ ऊपर करके जब भी हम भगवान को दिखाते हैं तो ये समर्पण की भावना है, यानी हम भगवान को ये बता रहे हैं कि आपके अतिरिक्त हमारा और कोई सहारा नहीं है। जैसे द्रौपदी की जब भरी सभा में उनको नग्न करने का संकल्प किया था दुर्योधन और दुशासन ने, तो द्रौपदी का और कोई सहारा नहीं था, सबने उनकी सहायता करने से मुंह मोड़ लिया था, कोई सहारा नहीं था। और उस समय भगवान द्रौपदी ने अपने दोनों हाथ ऊपर किए थे कि कृष्ण आपके अतिरिक्त मेरा और कोई सहारा नहीं, हे गोविंद हे कृष्ण कृपया मेरी रक्षा कीजिए। और आज हम सबकी वही स्थिति है, ये समय दुशासन है और हमारी जीवन की अवधि को साड़ी के समान खींच रहा है। हमारा ये जीवन साड़ी के समान है, समय रूपी दुशासन हमारे जीवन रूपी साड़ी को खींचता जा रहा है, खींचता जा रहा है। प्रतिक्षण हम मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। हम चाहे कितना भी अपने आप को बचाने का प्रयास करें, परंतु दुशासन रूपी काल हर क्षण हमारे जीवन रूपी वस्त्र को खींच रहा है और हमें मृत्यु की ओर ढकेल रहा है। अब हमें भी द्रौपदी के पद चिन्हों पर चलकर अपनी लाज को बचाना है, अपने जीवन की सुरक्षा करनी है और संसार के समस्त सहारों का आश्रय ना करते हुए केवल भगवान की शरण ग्रहण करके भगवान को पुकारना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण आपके अतिरिक्त अब और कोई नहीं है जो कि हमें इस माया से बचा सके, बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर से बचा सके, कृपया आप हमें अपनी शरण में ले लीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए अवश्य प्रार्थना कीजिएगा कि मैं अपनी साधना और अपनी सेवा को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्ण।